ஓம் சாந்தி. ஜெசா நாம் வைசே குணதாரி, நிர்மல் மன் நிர்மல் வாணி கி தனி, ஆதரணீய ராஜயோகினி டாக்டர் நிர்மலா தீதி ஜி ஹம் சபி கே பீச் மே உபஸ்தித் ஹை. தீதி ஜி ஆப்கா ஹார்திக் ஸ்வாகத் ஹை, ஸ்வாகத் ஹை, ஸ்வாகத் ஹை. साकार मात पिता की पालना से पली हुई आदरणीय निर्मला दीदी जी, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों की रीजनल डायरेक्टर हैं। इन दोनों ही खंडों के सभी देशों की ईश्वरीय सेवाएं आपके दिशा निर्देश अनुसार चलती हैं। साथ ही साथ आप ज्ञान सरोवर को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही हैं। वहां की ईश्वरीय सेवाएं आपकी निगरानी में होती हैं। चक्रवर्ती राजा की तरह देश विदेश में चक्र लगाकर अनेक आत्माओं का आप कल्याण करने के निमित्त बनी हैं और यह कार्य अविरत चलता जा रहा है और चलता ही रहेगा जब तक यह संगम युग है। तो ऐसी हमारी मीठी दीदी जी को आज विषय मिला है आज के इस पावन पर्व के आधार पर स्वरक्षक मर्यादा रक्षक या यज्ञ रक्षक की राखी के बारे में आज हम दीदी जी से सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। आज हमारा पुण्य पर्व राखी है तो इस पर्व के निमित्त आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां। आज सतगुरुवार भी है और हमारा भारत का स्वतंत्र दिन भी है तो आज जैसे तीन पर्वों का संगम है तो आप युगलों का बहुत सौभाग्य है जो इस शुभ पर्व पर यहाँ मधुबन में आप उपस्थित है। तो बाबा हमें माया से स्वतंत्र अर्थात सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। अब तक हम रावण की जंजीरों में फंसे हुए थे, मालूम भी नहीं था कि अब फंसे हुए थे परंतु फंस गए थे। तो बाबा हमें इन जंजीरों से छुड़ाते हैं तो उसका मेन उपाय है याद। याद द्वारा ही हम मायाजीत जगतजीत बनते हैं। तो पहले तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है, स्वयं की रक्षा दो प्रकार से करनी है। एक तो अंदर में हमारी जो 63 जन्म के पुराने संस्कार की माया है उसको निकालनी है। देवान के वश हम 63 जन्म से विकारों में फंसे हुए थे। सबसे बड़ा काम महाशत्रु है, उसको तो आप सभी ने जीत लिया, स्थूल रूप से तो जीत लिया परंतु सूक्ष्म में भी देखना है कि हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र रहती है, लौकिक स्मृति से अभी अलौकिक स्मृति आ गई है। एक दो को पति पत्नी समझते हैं या भाई भाई समझते हैं, क्योंकि आत्मा रूप में तो हम भाई भाई है, भाई बहन की भी दृष्टि ना हो, शरीर को देखना ही नहीं है, पुराने शरीर से पुराने संबंध से मर जाना है, अर्थात नष्ट मोह होना है। तो देखना है हम कहां तक नष्ट मोह बने हैं। जरा भी किसी में मेरापन है, देह में भी ना हो, देह भी बाबा की सेवा में लगा दिया है, तो परिवार में रहते न्यारा और प्यारा रहना, प्यार भी हो सबसे परंतु न्यारा भी हो, क्योंकि देह भान ये है सबसे सब विकारों का मूल। इसलिए दैहिक वृत्ति की अभी राख करना है, पूरा जलाकर राख कर देनी है, क्योंकि क्या है, माया को हम डंडा मार के बेहोश कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा समय तो बेहोश रहेंगी परंतु फिर जाग जाएंगी, परंतु यदि उसको ज्वालामुखी योग से भस्म कर देंगे, राख हो जाएंगी, तो वो राख से फिर माया उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं तो जरा भी देहभान की वृत्ति रही तो एक न एक विकार आएगा। तो देखना है कि हमारी हर एक के प्रति भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रहती है, परिवार में बच्चों को देखकर, माँ बाप को देखकर, पति पत्नी को देखकर ये बुद्धि में रहता है कि ये भी हमारे अलौकिक भाई है, मेरेपन से और मैंपन से बिल्कुल छुटकारा पाना है। अहम का अंश ना रहे, कोई भी बात का घमंड ना रहे, अपनी विशेषता का, अपनी पोजीशन का, अपने कुल का, धन का, अपने रूप का, पर्सनालिटी का बिल्कुल अहम ना हो, नशा ना हो, मैं करना नहीं है, जब मैं बोलते हैं मैं आत्मा हूं, जब मेरा कहते हो बुद्धि में याद करो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तीसरा मुख्य विकार है क्रोध, क्रोध का भी अंश न हो, स्थूल रूप से तो मारपीट नहीं करनी है किसी को भी, चाहे अपने बच्चे भी है, चंचलता करते हैं, चाहे नौकर चाकर है, चाहे अपने अंदर काम करने वाले हैं, उन पर गुस्सा नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है, चिड़चिड़ापन भी ना हो। और ऐसे भी ना कि बाहर से तो क्रोध ना करे पर अंदर से जलते रहे, तो वो जो और भी नुकसान करने वाला है। अंदर में गुस्सा दबा के रखेंगे ना बीमार हो जाएंगे, और वो अंदर में रखा हुआ गुस्सा कभी न कभी बाहर आ जाएगा। वो जैसे प्रेशर कुकर है ना, हाँ, उसका प्रेशर यदि हल्का नहीं करेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। उसी रीत से क्या होता है, कभी कभी हम गुस्सा दबा के रखते हैं, फिर दो चार बार दबा के एकदम गुस्से में आकर खूब बोल लेते हैं, तो ये भी ना हो। और कई बार क्या करते हैं, गुस्से में गुस्सा आया तो हम कहेंगे जो करना है करो, मुझे नहीं पूछो, मैं साथ नहीं दूंगा, तुमको जो करना है जैसे करना है जब करना है करो। मतलब फिर सहयोग नहीं देते हैं, राय नहीं देते हैं, तो ये भी ना हो। और कई बार ऐसा मन में गुस्सा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, बोलते करते नहीं है, पर वो व्यक्ति सामने आएगा ना तो जैसे देखा ही नहीं उस तरफ से चले जाएंगे दूसरे तरफ से, कि सामने देखेंगे आंखें मिलानी पड़ेंगी, ओम शांति करना पड़ेगा या नमस्ते करना पड़ेगा, इसलिए जैसे देखा ही नहीं उल्टे रास्ते पर चले जाएंगे, तो ये भी ना मन में भी किसी के प्रति गुस्सा ना हो। फिर चौथा है लोभ। जिनको लोभ होगा वो खूब संग्रह करता जाएगा, नई नई चीजें लेता जाएगा, पुरानी भी संभाल के रखेगा। और मनहूस होगा, कोई भी दान पुण्य या कुछ लेने आएगा तो मजबूरी से देगा या बहुत थोड़ा कुछ देगा। और लोभी कभी संतुष्ट नहीं होंगे, 1 लाख है तो कहेंगे 10 लाख चाहिए, 10 लाख है तो कहेंगे 1 करोड़ चाहिए, 1 मकान है तो कहेंगे ये मकान तो छोटा है अभी बड़ा चाहिए, 1 कार है तो कहेंगे ये तो पुरानी हुई अभी नई चाहिए, तो वो कभी संतुष्ट नहीं। चाहिए चाहिए कि उनको बीमारी। फिर खाने में भी लोभ होगा, हाँ तो अच्छी चीज देकर खूब खा लेंगे, अच्छी नहीं लगेंगी तो कहेंगे भूख नहीं है, डायबिटीज है मालूम है मीठा नहीं खाना चाहिए तो भी खा लेते हैं, तो जबान पर कंट्रोल नहीं, स्वादेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, तो ये देखना है कि इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए, लोभ का सूक्ष्म रूप है इच्छा है, अच्छा लगता है तो ये भी ना हो। सब कुछ अच्छा है, जो भी मिला है अच्छा है, ऐसा नहीं उससे बढ़िया चाहिए। फिर मोह, मोह भी कम नहीं है, मोह के वश रोना पड़ता है। हाँ, बच्चा बीमार है, माँ बाप को ज्यादा चिंता हो जाती है। कोई मर गया घर में, रोते रोते थकते नहीं, सालों तक उसको याद करते रहेंगे। मामा कहते हैं देखो, लौकिक को भूलते नहीं और पारलौकिक बाप इतना कुछ देते हैं, अविनाशी खजाना, उसको भूल जाते हैं। तो ये देखना है कि हमें ज्ञान के और योग के अस्त्र शस्त्र यूज करने हैं, जिम्मेवारी निभाओ। अपने को गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो। बाबा का परिवार है, बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है, उसको निभाना है। बाल बच्चे बुजुर्ग माँ बाप उनको छोड़ के चले नहीं जाना है, उनकी जिम्मेवारी निभाओ। परंतु बाबा के बच्चे हैं ऐसे समझ कर नहीं कि मेरे मेरे हैं। फिर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि क्या होता है आजकल एक दूसरे से भेंट करते हैं, और यदि कोई हमारे से ज्यादा होशियार है, धनवान है, स्वरूपवान है, तो उसकी ईर्ष्या आती है। तो ये भी ना हो, ईर्ष्या भी ना हो, क्योंकि ईर्ष्या से क्या होगा, अंदर ही अंदर जलन होगी। परंतु जितना हम रूहानी प्यार रखेंगे एक दूसरे, क्योंकि आत्मिक वृत्ति रही, बाबा के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो देखो जो जिसके साथ अपना प्यार होता है, अपना बच्चा है। माँ बाप पढ़े नहीं हैं, पर बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो क्या होता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं और भी नशा चढ़ता है कि मेरा बच्चा नंबर वन ले आया है, मेरा बच्चा डॉक्टर बना, वकील बना, स्पोर्ट में होशियार है, तो उसका नशा रहेगा। तो इस रीति से औरों की जो विशेषता है उसको एप्रिशिएट करो, उसका गुणगान करो, उसकी ईर्ष्या करके उसको नीचे लाने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि ईर्ष्या जो होंगी ना तो कहेंगे हाँ तुम बहुत उसको अच्छा समझता है, पर इसमें ये अवगुण है, ये खामी है, ये खामी है, ये कमी है। तो उससे क्या होगा, फालतू संकल्प चलेंगे कि कैसे उसको दूसरों की नजर में गिराए। तो ये हमारे में ना हो, ईर्ष्या अलबेलापन ना हो, क्योंकि जो अलबेले होते हैं ना उनको समय, धन, शक्ति, संकल्प की वैल्यू नहीं रहती और उसको गंवाते हैं। हाँ, सिर्फ धन की वैल्यू नहीं है आजकल, परंतु ब्राह्मणों के समय की भी वैल्यू है। फालतू समय हमको गंवाना नहीं है। इकोनॉमी से संकल्प भी, जो शुद्ध संकल्प है, शुभ भावना है, वही रहे। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प ना हो। फिर देखना है कि जो हम बोलते हैं, बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। यदि आप कोई भी बात दो वाक्य में सुना सकते हो, समझा सकते हो, तो 10 वाक्य बोलने की दरकार नहीं। विशेष क्या होता है, ब्राह्मणों को सर्विस का शौक होता है ना, कोर्स कराने के टाइम 1 घंटे का बाबा कहते कोर्स हो, उसमें 1.5 घंटा ज्ञान दो, 10 मिनट योग कराओ, 5 मिनट अगला लेसन रिवाइज कराओ। परंतु जो बोलने में जिनको बहुत शौक होता है, वो क्या करेगा, कभी कभी एक एक लेसन का 1.5-2-3 घंटा तक लगा देते हैं। प्रश्न पूछते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, आदि आदि। तो ये ना हो। धन भी इकोनॉमी से, क्योंकि हमारी लाइफ सिंपल है। दुनिया में नई नई चीजें, नई नई फैशन, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, परंतु ऐसे नहीं कि हम उसमें अपना समय गंवाएं, उसके हम आदती बन जाए। क्योंकि आजकल क्या है, सबसे बड़ी और बुरी आदत है ब्राह्मणों में इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, उसमें इतना समय गंवाते हैं फालतू। रात को 11-11, 12-12 बजे तक चलाते रहते हैं, तो ये भी हमारी बुरी आदत छोड़नी है। तो देखना है आलस्य भी ना हो, क्योंकि जो आलसी है ना, वो सोचते आज नहीं कल करेंगे, कल उनकी आज कभी आती नहीं, कल रोज करते काल खा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कल मत करो, जो करना है आज करो, अभी करो। क्योंकि कई बार आलसी लोग है ना, उनको सुख सुविधा के साधन चाहिए, बैठे रहेंगे आराम कुर्सी में, और कुछ काम करने आए कहें बात आएंगे, कहेंगे मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, टांगे दर्द करती है, कमर में दर्द है, आदि आदि। तो ये बहानेबाजी नहीं करो, क्योंकि जो करेंगे हमारा भाग्य बनेगा। हम औरों के ऊपर तो कोई उपकार नहीं करते हैं, इसलिए उमंग उत्साह में रहना है कि अभी हमारा समय है अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाने का, तो इसलिए आलस्य नहीं करना है। और किसी से वैर भाव नहीं रखना है, घृणा ना हो, वैर भाव ना हो, हर एक से साथ आत्मिक प्यार हो। कोई कितना भी गाली देवे, हमें उनके लिए शुभ भावना रखना, बदला लेने की भावना न हो। बाबा कहते हैं बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। तो हमें अपने से उनके साथ मैत्री भाव रखनी है। बाबा कहते हैं निंदा जो हमारी करे मित्र हमारा हो, तो इसलिए उनके साथ भी मैत्री भाव रखो, उनको भी मदद करो, तो क्या होगा उनका हमारे लिए ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। तो इसलिए देखना है कि हमारे ये सब जो मेन 10 विकार है उसके भी जो सूक्ष्म विकार है, क्योंकि काम विकार का सूक्ष्म विकार है फैमिलियरिटी, नाम रूप में फंसना, आकर्षित होना, प्रभावित होना, ये कुछ ना हो, क्योंकि स्थूल में तो काम विकार आप सभी ने जीत लिया, परंतु किसी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी विशेषता को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, तो ये भी तो सूक्ष्म में काम का अंश है। क्योंकि जिनको जो विशेषता मिली है बाबा से मिली है, भल ज्ञान के पहले भी उन्होंने कुछ विशेषता थी, परंतु वो विशेषता इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई आर्टिस्ट ज्ञान में आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं कि ज्ञान के भले वो भल एक्टर्स थे, गायक थे, परंतु ओपनिंग डे के लिए नर्वस हो जाते थे, क्योंकि काफी पत्रकार वगैरह उनका इंटरव्यू लेते थे और फीडबैक देते थे पत्रों में अपने, तो इसलिए थोड़ा नर्वस हो जाते थे। पर अभिज्ञान के बाद वो नर्वस नहीं होते हैं, और भी जो कोई नर्वस होते हैं ना उनको भी हिम्मत दिलाकर उनकी आर्ट को स्टेज पर ठीक रीति से एक्सप्रेस करने की हिम्मत देते हैं। तो इसलिए यदि हमारे में कोई कमी है तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखकर याद के द्वारा उसका जो ऑपोजिट गुण है, शक्ति है, वो अपने में भरो तो कमी दूर हो जाएंगी। यदि देह अभिमान है देही अभिमानी बनो, यदि क्रोध है अपने में शांति और सहनशीलता की शक्ति भरो, यदि लोभ है संतुष्टता भरो, क्योंकि ज्ञान कहता है कि सत्युग में तो हमको सब कुछ मिलेगा, इतने गहने होंगे लक्ष्मी नारायण को, रोज नए अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, खाने में भी 36 प्रकार का भोजन होगा, तो जब ये बुद्धि में होगा कि कल हमको इतना अविनाशी खजाना मिलेगा, वस्त्र आभूषण विमान सब कुछ होगा, तो आजकल की कार मोटर बाइक आदि आदि का फिर शौक नहीं होगा।
ओम शांति। दो जरूरी सूचनाएं हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जिन भाई बहनों को रोटी विभाग में सेवा मिली थी आज सुबह 10 बजे जाने की, वह यहाँ बैठे हैं क्या? कृपया हाथ उठाए अगर वो यहाँ बैठे हो तो। नागपुर और गुना सेंटर के माताएं और भाई बैठे हैं यहाँ पर, तो कृपया आप अगर यहाँ बैठे हो तो अपनी सेवा में जाकर सहयोग दें, बहुत जरूरी है। और दो बच्चे गुम हुए हैं, 5-5 साल के। एक का नाम है ओजस यादव, जिसने व्हाइट शर्ट और व्हाइट जींस पहनी हुई है। अगर वह मेरी आवाज़ सुन रहा है तो वह अपनी माता जी से बहनों की तरफ 3 नंबर गेट के पास मिले अंदर की तरफ, और अगर किसी को वो दिखाई दे तो वो स्टेज के पीछे लेकर आए। और दूसरा है वरुण शैली, जो वो भी 5 साल का है, जिसने पीले कलर का शर्ट पहना है, वह भी अगर किसी को मिले तो स्टेज के पीछे लेकर आए। थैंक यू। आगे दीदी हमें और इसी विषय पर अपनी बातें सुनाएंगी।
ओम शांति। तो स्व की रक्षा करने के लिए अंतर्मुखी होके चेक करना है कि कहाँ माया, पुरानी संस्कार, पुरानी आदत, पुरानी रीति रसम अनुसार तो नहीं चलती है। तो ज्ञान से हमें अपने आप को चेक करना है, क्योंकि माया बहुत चालाक है। वो जब देखती है कि हम जरा सावधान कम है तो हमारे ऊपर हमला करेंगे। इसलिए हमेशा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र और परखने की शक्ति मजबूत रखनी है, ताकि हम माया को देखकर दूर से ही भगा देवे। और यह द्वारा हमें अंदर शक्ति भरनी है, ताकि वो शक्तियों से जो हमारी पुरानी कमजोरी है, विकारी संस्कार है, वो हम नष्ट कर सके। तो जितना जितना हम मर्यादाओं पर चलेंगे तो उससे क्या होगा, मर्यादाओं पर चलने से हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। तो सबसे पहली ब्राह्मणों की मर्यादा है अमृत वेले उठना, उसमें हमारा अलबेलापन या आलस्य ना हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम बैलेंस नहीं रखते हैं, रात को देरी से सोते हैं, तो नेचुरली है रात को देरी से सोएंगे, सवेरे उठने में सुस्ती आएंगी, थकावट लगेंगी। तो इसलिए हमारा टाइम टेबल हमको ठीक रखना है, 10-10:30 तक सो जाना है, 3:30-4 तक उठ जाना है, और 1.5 घंटा एकदम एकाग्रता से बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं नियम से उठकर बैठकर झुटका खाना, परंतु एकाग्र होके एक बाबा के प्यार में लवलीन होकर बैठे। दूसरा, मुरली जरूर सुननी है, पढ़नी है। बाबा कहते थे जब तक मुरली नहीं सुनी है, पढ़ी है, तब तक ब्रेकफास्ट नहीं। पहले आत्मा को भोजन कराना है, फिर शरीर को भोजन कराना है। इसलिए ये अपना जो नियम है वो पक्का रखना है। कुछ भी हो जाए, मुरली सुनने पढ़ने के बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करना। तीसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के समय योग रहे। सिर्फ कर्म नहीं करना है, कर्म योग हो, क्योंकि गृहस्थी है, जरूर नौकरी धंधा घर का काम काज करना होता है, सब कुछ करो, परंतु बाबा की याद में रहकर, आत्मिक श्रुति में रहकर। मेरा नहीं समझना है, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है। चौथा, भोजन सात्विक हो, बाबा की याद में पकाना है, बाबा की याद में खाना है, किसी भी हालत में प्याज लहसुन मांस मच्छी अंडे न खाना है, न खिलाना है, न पकाना है, न खरीदना है। ये ध्यान रखना है, खरीदना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि परिवार में आपके कोई खाने वाले हैं और बहू है, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, पकाना है, शॉपिंग करनी है। तो ये ध्यान में रखना है कि न हमें खरीदने जाना है, न खाना है, न पकाना है, न सफाई करनी है। कई बार नर्स होते हैं, उनको पेशेंट को खिलाना पड़ता है, तो ये भी कोशिश करके हमारा काम ऐसा हो जो पेशेंट को नॉन वेज नहीं खिलाना पड़े। देखो यहाँ तो भारत में विशेष वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, परंतु विदेश में भी क्या है कि जो परिवार में नॉन वेजिटेरियन है, हमारे पास एक माता थी, उसके बच्चे और पति नॉन वेजिटेरियन थे, उसने क्या किया, अपने 13 साल का लड़का था ना, उस लड़के को खाना पकाना सिखा दिया। तो वो अपना नॉन वेजिटेरियन पकाता था और सफाई वगैरह करता था। तो इसलिए क्या है कि उस माता को पकाने से छुट्टी मिल गई। इतने तक कि कईयों ने क्या किया, क्योंकि विदेश में तो ज्यादातर नॉन वेज होते थे, तो उन्होंने क्या किया, दो किचन बना दिए, एक किचन घर के अंदर, दूसरा घर के बाहर, और एक में नॉन वेज बने, दूसरे में वेजिटेरियन बने। तो उनका फ्रिज अलग, कुकर अलग, बर्तन अलग। तो इसलिए क्या है कि जितना नियमों का पालन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अपने में वो ताकत भरती है। नियम भंग करने से, मर्यादा भंग करने से अपने में ताकत नहीं आती। तो इस पर ध्यान रखना है खाने पीने में। फिर पहरवाइस में भी हमको ध्यान रखना है कि हम मर्यादा युक्त कपड़े पहने। क्योंकि दुनिया में तो क्या करते हैं, आजकल माताओं के जो ब्लाउज होते हैं ना, वो 4-5 इंच पेटीकोट से ऊपर होते हैं, मतलब पेट 4-5 इंच देखने में आता है, और ब्लाउज भी कईयों के इतने गले डीप होते हैं कि सब कुछ देखने में आवे। तो ऐसे फैशन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, जो मर्यादा है, चलो आप गृहस्थी है, पूरी बाई के कपड़े ना पहनो ब्लाउज, परंतु कम से कम आप अपना पेट नंगा नहीं दिखावे। गंजी पहने, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, क्योंकि कई बार क्लास में तो चलो मर्यादा युक्त पहनते हैं, पर बाहर जाते हैं तो बाहर वालों जैसे बन जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे घर में है, चाहे फंक्शन में जाते हैं, चाहे क्लास में जाते हैं, अपना मर्यादा युक्त वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों की दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है। चाहे आजकल तो समाचार ऐसे आते हैं 80 साल की बूढ़ी के ऊपर भी व्यभिचार करते हैं, रेप करते हैं, तो ऐसे नहीं समझना कि हम तो शादी शुद्धा है, 40-50 वर्ष की उम्र है, हमारे तरफ किसकी वृत्ति दृष्टि खराब जाएंगी। नहीं, उनको तो स्त्री चाहिए, चाहे वो 5 मास की बच्ची है चाहे 60 साल की बुढ़ी है, उनको तो स्त्री चाहिए जिस पर वो व्यभिचार कर सकते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि वृत्ति खराब न हो, इसलिए हमें भी मर्यादा युक्त वस्त्र पहनने हैं। फिर बोलने चालने में भी मर्यादा हो, मैनर्स हो, क्योंकि बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं राजा बनने के लिए। तो राजाओं का बोलना कैसा होता है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे से बोलना है, एसेंसफुल सारयुक्त बोलने में, रफ डफ नहीं, किसी का इंसल्ट नहीं करना है, हर एक को रिस्पेक्ट देके चलना है। और चलने में भी हमारी रॉयल्टी हो, चलते चलते हम जूतों का आवाज ना करें, इतना सॉफ्ट चले ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। खाने पीने में भी रॉयल्टी हो, क्योंकि बाबा कहते हैं खाने समय बाबा की याद में खाओ। कई है खाते समय भी बहुत बातचीत करते हैं और खाते पीते भी बहुत आवाज करते हैं। चाय गर्म होती है तो हम क्या करते हैं, शुशु करके चाय पीते हैं, कितना आवाज होता है। और कई समाज में आदत होती है खाना खाते हैं तो ऐसे करके खाते हैं तो उसका भी आवाज आता है। तो ये खाने समय भी आवाज न हो, खाना भी टाइम पर आराम से बैठकर खाना है, ऐसे नहीं चलते फिरते फ्रिज खोल के मुंह में कुछ डाल दिया, ये भी रॉयल्टी नहीं है, बस टाइम पर अपना तीन चार टाइम जो भी है टाइम पर खाना खाना है और आराम से बैठकर बाबा की याद में खाना है। तो ये अपनी मर्यादाओं की जितने जितनी मर्यादाओं पर चलेंगे तो क्या होगा, न खुद को माया आएंगी न औरों को माया आएंगी, नहीं तो औरों को भी माया आती है। यदि हम मर्यादा युक्त ड्रेस नहीं पहनते हैं तो औरों को माया लाने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये देखना है कि हम अपना समय शक्ति धन कुछ न व्यर्थ गंवाएं न किसी का हमारे प्रति व्यर्थ संकल्प चले कि ये ब्राह्मणों के ऐसे करते हैं क्या, ओम शांति में जाकर गुस्सा करते हैं क्या, तो ये न हो, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। तो हमें यज्ञ की भी रक्षा करनी है, जितना यज्ञ का नियम का पालन करेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, यज्ञ की रक्षा होंगी, नहीं तो यज्ञ को बदनाम करेंगे ना। सेंटर पर जाकर यदि गुस्सा करेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां ये सिखाती है तुमको, तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम होगा। और भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मधुबन को बाबा को यदि कोई ग्लानी करता है तो हमारी क्या फर्ज है, उन्हों को सच्चा बताना कि जो उनकी मान्यता है वो सच्ची नहीं, क्योंकि एक को देखकर नहीं, कई बार है एक ने कुछ गड़बड़ की तो सारे यज्ञ को बदनाम करते हैं लोग, तो इसलिए उनको बताओ कि कितनों ने अपने जीवन में फायदा लिया है। पढ़ाई में तो नंबर वार होते हैं, कोई सब तो नंबर वन नहीं होते हैं, तो उनको कहो देखो आकर नंबर वन को देखो, हमारी दादियों को देखो उन्होंने अपना जीवन कैसा बनाया है। आप नंबर लास्ट वाले को देखकर यज्ञ के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, सबको देखना चाहिए तब आपकी जजमेंट ठीक होंगी। तो इसीलिए यज्ञ का बचाव करना है, यज्ञ की ग्लानी करने वाले को बंद करना है। तो इसलिए हमें यज्ञ की भी रक्षा करनी है। तो रक्षाबंधन के दिन आप अपने से ऐसी प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम अभी हमारे पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करेंगे, कि पुराने संस्कार आदत स्वभाव कर्मेंद्रियों के वश होना ये नहीं, हम राजयोगी राजयोग द्वारा अपने पर पूरा कंट्रोल करके दिखाएंगे, एक भी कर्म इंद्रियों के हम वश नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हैं, आंखें देखती है और चलायमान हो जाती है, ये खावें ये पहने ये खरीदे आदि आदि, क्योंकि दुनिया में माया का पंप तो बहुत है। ऐसे ऐसे नए मशीन आते हैं, ऐसे नए नए सुख के साधन बाजार में रोज नए नए आते हैं, तो ये देखकर हमारे मन लुभायमान ना हो जाएं, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो हर कर्मेंद्रिय, चाहे आंख है चाहे नाक है, क्योंकि कई बार खुशबू आती है, हाँ पकौड़ा तलता है खुशबू आती है तो मन हो जाता है चलो पकौड़ा खाएं। तो ये ना हो। कान है वो चाहता है कि हम नया नया म्यूजिक सुने। कान है उसको पर चिंतन सुनने की आदत पड़ी है, उसमें इंटरेस्ट आता है, तो उसमें भी हम व्यर्थ समय गंवाते हैं। तो परमत परदर्शन पर चिंतन में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, शक्ति नहीं गंवानी है। जबान है वो जबान डबल काम कर सकती है। यदि हम मिठास से प्रेम से बोलते हैं किसी को भी वश कर सकते हैं, शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। पर यही जबान यदि गुस्सा करती है, कड़वा बोलती है, किसी का अपमान करती है तो क्या होगा? हमारे परिवार को भी हम शत्रु बना देंगे। इसलिए हमारा उस पर भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और स्पर्श इंद्रिया, हाँ कि हमको तो बहुत सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, या किसी व्यक्ति को पसंद आ गया तो समझेंगे चलो उसको गले लगाएं, उसको चुम्बन करें, उसका हाथ पकड़ें आदि आदि, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चाहे अपना परिवार भी क्यों ना हो, पति पत्नी भी क्यों ना हो, परंतु जितना हो सके कम स्पर्श, और जितना हो सके स्वावलंबी बनना है। औरों के ऊपर हमें आधार नहीं रखना है। तो इस रीति से रक्षाबंधन के दिन बाबा हमें रक्षा करते हैं। जब भी भक्तों पर भीड़ पड़ती है, क्या है, यदि भगवान को याद करते हैं भगवान मदद करते हैं। उसमें भी विशेष बच्चों को, क्योंकि बाबा ने कहा है मेरे बच्चे मैं बैठा हूं चिंता नहीं करो। तो हमने देखा है कैसी भी परिस्थिति है, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, बाबा के बच्चे सेफ रहते। उसमें भी उस समय मेरा बाबा कहा, और आप देखेंगे आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कई भाई बहनों को देखा है कार सामने सामने से टकराती है, कार एकदम खत्म हो जाती है, और ब्राह्मण ड्राइवर यदि उस समय बाबा को याद करता है तो क्या होता है, बहुत सूली से काटा, उसकी ऐसी रक्षा हो जाती है। सुनामी में कई भाई बहनों को समझो सुनामी के टाइम छह देशों में पानी आ गया, छह घंटे में लाखों लोग मर गए, परंतु बाबा के एक भी बच्चा नहीं मरा। बाबा के घर अर्थक्वेक में, सुनामी में सेफ रहे। तो इसलिए हमने देखा है, बाबा तो हमारी रक्षा करता है, परंतु उस समय हाय राम क्या होगा ये नहीं सोचना। मेरा बाबा कहो और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इसलिए बाबा की जितनी हम श्रीमत का पालन करेंगे, बाबा बैठा है, करावनहार बैठा है, तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमें बुद्धि में रखना है हमको क्या करना है, और बाबा फिर अपना काम करेगा। ओम शांति।
ओम शांति। राखी का पावन पर्व रक्षा का प्रतीक है। आज के इस पावन त्योहार में दीदी जी ने हमें बताया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये बताया कि कैसे हम स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बने, और साथ ही साथ पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने की प्रतिज्ञा करके सच्चा राखी का त्योहार बनाएं। तो इस प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने का विश्वास दिलाते हुए हम एक हाथ की ताली से दीदी को धन्यवाद करेंगे।